ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच इस समय दूसरे दौर की बातचीत होनी है। इस दौरान दीर्घकालीन संघर्ष विराम के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी।
We also decided to further speak on the 12th of May at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding.
भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक ने बताया कि शनिवार दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए।
I have no doubt in my mind that we achieved total surprise and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast.
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों, उनके सहायक षड्यंत्रकारियों को दंडित करने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।
ऑपरेशन सिंदूर वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड विद अ क्लियर मिलिट्री एम टू पनिश द परपेट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ टेरर एंड टू डिस्ट्रॉय देयर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट आई डू नॉट स्टेट हियर ऑफ कोर्स इज द ऑफन स्टेटेड डिटरमिनेशन ऑफ इंडिया and its intolerance to terror.
एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल एके भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया।
As I said, their planes were prevented from coming inside our border, so we do not have the wreckage with us. But definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here.
नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने कहा कि उत्तरी अरब सागर में तैनात हमारी नौसेना कराची सहित समुद्र तथा जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की तैनाती के कारण पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना की इकाइयां रक्षात्मक मुद्रा में रहने के लिए मजबूर हैं।
The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units.
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और अधिक जानकारी दी।
अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है, सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेयंस में चल रही है। आज दोपहर को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ की वार्तालाप है, उसके बाद पता लगेगा आने वाले दिनों में हमारा क्या रुख रहेगा।
इस बीच थलसेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में कल रात कुल मिलाकर शांतिपूर्ण स्थिति रही। सेना ने कहा कि किसी भी तरह की घटना की सूचना नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पूरे विश्व को एक निर्णायक संदेश दिया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद से मुकाबले में आम सहमति बनाने के लिए 20 देशों के नेताओं के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कई इस्लामिक देशों सहित सभी ने भारत के रवैये के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। श्री पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है।
9 आतंकवादी ठिकाने जो POJK में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्देलती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 51 से अधिक स्थानों पर 71 बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस संगठन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान न केवल वैश्विक आतंकियों के लिए एक उत्पत्ति स्थल रहा है, बल्कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ISIS जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के राष्ट्र पोषित विकास का भी केंद्र है। दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन सामान्य रूप से जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने परामर्श जारी किया है कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर सुरक्षा उपायों में वृद्धि के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने, केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NTMA ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अज्ञात वस्तु को न छुएं, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकते हैं। NTMA ने कहा है कि अगर लोगों को कोई अज्ञात वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और वो 2016 में पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल से फरार हो गया था। NIA ने बिहार पुलिस के साथ साझा अभियान के तहत कश्मीर सिंह को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नर्सों का कल्याण सीधे तौर पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी है। श्री नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नर्सों का कल्याण बेहतर स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। असम में पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों में शानदार जीत दर्ज की है। असम राज्य चुनाव आयोग के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पंचायत चुनाव की मतगणना में लगभग सभी जिलों में बढ़त बनाए हुए हैं। अमेरिका ने कल रात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। व्हाइट हाउस के बयान में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के साथ वार्ता बहुत ही सार्थक रही और आज सौदे का विवरण साझा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्मदिवस के अवसर पर विश्वभर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज के दिन उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी हैं। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 8वें दिन लड़कों की कबड्डी के फाइनल मैच में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बालिकाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने ने क्लीन एंड जर्क में 95 किलोग्राम और ओवरऑल में 170 किलोग्राम का भार उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने बालिका वर्ग फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में हरियाणा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उधर दिल्ली में कल जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए। तालिका में महाराष्ट्र 30 स्वर्ण और 25 रजत सहित 80 पदकों के साथ शीर्ष पर है। आज
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।